अगस्सिनीतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यदिदं तीर्थंकर नाम कर्मानंतानुपम प्रभाव मचिंत विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजयकरम तस्याश्रव विधि विशेषोस्तीति। जो यह तीर्थंकर नाम कर्म है वह अनंत अनुपम प्रभाव वाला है, वह अचिंत विभूति विशेष का कारण है और तीनों जगत पर विजय प्राप्त करने वाला है। उसकी आश्रव विधि विशेष को जो कि पाई जाती है यहाँ पर आगामी सूत्र में बताते हैं आचार्य उमास्वामी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्य कर्ण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थकरत्व के ये 16 आश्रम हैं, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों में अनतिचार अर्थात निरतिचार शील और निरतिचार व्रत। व्रत 5 है और बाकी व्रतों की रक्षा करने के लिए शील 7 बताए हैं और मुनियों की अपेक्षा 5 महाव्रत हैं और शील गुण जो है 18,000 है। तो इनमें अतिचार न हो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और संवेग हो। अभीक्ष्ण का अर्थ होता है अखंड अटूट निरंतर, ज्ञानोपयोग यानी आगम में ही अपना उपयोग लगा रहे हैं, निरंतर आगम 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 उसी में लगा रहे हैं। अथवा उसके साथ और भी एक बात है संवेग, संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रीति। तो निरंतर ये बात बनी रहे। शक्तितस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग और तप चलता रहे। साधु समाधिर, साधुओं की समाधि, यहां पर समाधि का अर्थ उनके उनके परिणामों की निर्मलता में निमित्त बने साधुओं की, उनका स्थितिकरण उनकी विशुद्धि बढ़ाने में सहायक बने वो समाधि। समाधि का अर्थ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। राजा श्रेणिक ने बहुत किया था ये काम। फिर वैयावृत्त करण, वैयावृत्त करना अर्हत आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन, इन 4 की भक्ति ही भक्ति करना, अरहंतों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति, बहुश्रुति यानी उपाध्यायों की भक्ति, और प्रवचन का अर्थ आगम है, उसकी भक्ति करना, वो भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। आवश्यका परिहाणी, जो छह आवश्यक होते हैं साधुओं के, ये साधुओं की अपेक्षा उन आवश्यकों में अपरिहाणी, अपरिहाणी का अर्थ हानि शब्द में परि उपसर्ग लगा है, तो वो हानि का न जो है वो ण बन गया है री के कारण, परिहाणी। तो अपरिहाणी, परिहाणी का अर्थ नुकसान, अपरिहाणी का अर्थ उसमें हानि न करना, आवश्यकों को परिपूर्ण करना। मार्ग प्रभावना, फिर मार्ग कह लो धर्म कह लो उसकी प्रभावना करना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो मार्ग हो गया, और फिर सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, वो धर्म हो गया। तो धर्म प्रभावना, मार्ग प्रभावना एक अर्थक है। फिर प्रवचन वत्सलत्व, यहां पर प्रवचन शब्द का अर्थ सधर्माजन है, उनके प्रति वात्सल्य, ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम है। इनका विस्तृत वर्णन धवल ग्रंथ में आठवीं पुस्तक के अंदर उपलब्ध होता है। केवल दो कारणों में अंतर है, शक्तितस्त्याग, वहां पर प्रासुक परित्याग के नाम से है, यहां पर शक्तितस्त्याग में इन्होंने दान लिए हैं, तीन प्रकार का दान लिया है। त्यागो दानम, त्याग का अर्थ यहां दान है। तत्त्रिविधम, वो तीन प्रकार का है, आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम चेति, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, ऐसे तीन प्रकार का दान लिया है। तत्शक्ति तो यथा विधि प्रयोज्यमानं त्याग इत्युच्यते, वो शक्ति के अनुसार विधिवत प्रयोग करने पर त्याग इस तरह कहा जाता है। हाँ, यहां पर त्याग का अभिप्राय दान ही है, यहां पर और अन्यत्र भी, त्याग धर्म में भी त्याग का अर्थ दान ही होता है। वो ठीक है ना, वो महाव्रत में जैसे पांच पापों का त्याग किया जाता है, तो वो जो त्याग है वो दान रूप नहीं है, ये ठीक कह रहे हैं आप, पर यहां पर उत्तम त्याग धर्म में और यहां पर शक्तितस्त्याग धर्म, शक्तितस्त्याग ये 16 कारणों के अंतर्गत जो शक्तितस्त्याग है उसमें, और जो 10 धर्मों में उत्तम त्याग धर्म है, वहां पर त्याग का अर्थ दान लेना है, बाकी पापों का जो त्याग होता है वो दान नहीं है। पांच पापों का त्याग कर दिया तो उसका नाम व्रत हो गया। रस परित्याग जो है, रसों का परित्याग भी दान नहीं होता है। आपने नमक छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया को आप नमक खिलाते रहोगे, आपने छोड़ा है, अपने लिए छोड़ा है। और धवला में एक और ऐसा कारण बताया तीर्थंकर प्रकृति का, जो यहां पर जो 16 भेद दिए हैं उससे थोड़ा अलग है। उसमें उसका नाम है क्षण लव प्रतिबुद्धता, क्षण अधिक से अधिक और लव कम से कम, प्रतिबुद्ध हो जाना, जागृत हो जाना, कोई भी त्रुटि हो रही है, असावधानी हो रही है, तो क्षण यानी 4 मिनट और लव यानी 37.4 सेकंड, इतने समय में वो सही कर लेते हैं उसको। ऐसे साधक तीर्थंकर बनते हैं भविष्य में दर्शन विशुद्धि के साथ। बाकी दर्शन विशुद्धि को उन्होंने पूरे 15 बाकी की जितनी 15 भावनाएं हैं ना, 15 कारण जितने हैं, उन सबके साथ धवला में दर्शन विशुद्धि को जोड़ा गया है। जिनेन भगवतारहत परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रंथ लक्षणे मोक्ष वर्तमने। जिनेन्द्र भगवान अरहत परमेष्ठि के द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ नामक मोक्ष मार्ग में रुचिर दर्शन विशुद्धि, जो रुचि होती है वो दर्शन विशुद्धि है, पहले उसका लक्षण बतला चुके हैं। तस्ाष्टावंगानी, उसके 8 अंग होते हैं, निशंकितत्व, निकांक्षिता, विचिकित्सा विरहता, अमूढ़ दृष्टिता, उपब्रंहणम, स्थितीकरणम, वात्सल्यम, प्रभावनं चेति। ये 8 बतलाए सम्यक के। सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष साधनेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदरो विनयस् तेन संपन्नता विनय संपन्नता। सम्यक ज्ञान आदि के प्रति जो कि मोक्ष में साधन भूत है, मोक्ष में साधन भूत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र ही है, तो उनके प्रति आदर, उनकी पूजा करना। फिर तत्साधनेषु, और रत्नत्रय के साधन जो है वो कौन है? गुरु आदि है, क्योंकि गुरु से रत्नत्रय का लाभ होता है। तो उनके प्रति स्वयोग्य वृत्त्या, अपनी योग्य प्रवृत्ति के माध्यम से सत्कार है। सत्कार का अर्थ होता है पूजा, प्रशंसा, आदर, विनय, तेन संपन्नता, उससे संपन्न होना विनय संपन्नता है। अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु। देखिए कितनी सुंदर बात है, अहिंसादि 5 व्रत है, और उन 5 व्रतों की रक्षा में जो कुछ किया जाता है वो तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं बताई है, तो उनमें उनको क्रोध वर्जन आदिषु शीलेषु, उनको शील कहा है। 5 व्रतों की 25 भावनाओं को यहां पर शील कहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। तो उनके प्रति निरवद्या वृत्ति, निर्दोष प्रवृत्ति रखना, शील व्रतेष्वनति चार। जैसे उदाहरण के लिए अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी है, तो 7वें अध्याय में आने वाली है, वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वचन को संभाल कर बोलना, निरंतर इसका ध्यान रखने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मन की गुप्ति रखना है, मन में एकदम उच्छृंखल विचार नहीं आने देना है, मन को ऐसे स्थान पे लगा के रखना है जिससे उस तरफ कुछ प्रतिकूल विपरीत विचार उत्पन्न ही ना हो। जैसे कई बार ऐसे विचारों में खो जाते हैं ना बहुत से लोग, बैठे बैठे ऐसे सोचते सोचते विचार करते करते कहीं से कहीं, कहीं से कहीं क्या क्या जोड़ जोड़ करके एकदम दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं वो। यानी वो यहां तक के सोच लेते हैं कि मेरी शव यात्रा में कौन कौन रहेंगे और कौन कौन धोखा देंगे। और ये सब दुनिया भर के जो कल्पना जाल है वहां न जाकर के अपने जो अभी पुरुषार्थ का समय मिला है, इस ये पुरुषार्थ तो उसके बाद काम आने वाला है ना, इसका फल आगे चलकर प्राप्त होने वाला है। तो ये पुरुषार्थ का जो समय, इसमें ये पुरुषार्थ करना है आपको। यानी परीक्षा देते समय आपको पास होने के बाद की मिठाई की चिंता नहीं करनी है, वहां परीक्षा देते समय आपको लिखने की प्रवृत्ति पर ध्यान देना है। ऐसे पांचों व्रतों की पांच पांच भावनाएं बताइए, ब्रह्मचर्य की भावना बताइए, स्त्री राग कथा श्रवण, ऐसी कथाएं ऐसी चर्चाएं नहीं सुनना है जिससे स्त्रियों के प्रति विषय विकार संबंधी राग उत्पन्न हो जाए। अब्रह्म संबंधी राग उत्पन्न हो जाए, कुशील संबंध, कुशील कुशील संबंधी राग उत्पन्न हो जाए, ऐसे चर्चाएं नहीं करना है। फिर उनके सुंदर रूप का अवलोकन नहीं करना है, क्योंकि रूपावलोकन से भी अनादि के संस्कार से उस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आए तो दृष्टि को नीचे कर लेना, फिर पुरानी बातों को याद नहीं करना है जो उस संबंध में हुई है, उसका स्मरण नहीं करना इत्यादि। तो इसमें एकदम हानि नहीं करना, ये भी एक भावना है, 16 कारणों में से एक कारण है। जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषये सम्यक ज्ञाने नित्यम युक्तता अभीक्षण ज्ञानोपयोग। जीवादिक जो 9 पदार्थ हैं उनके स्वतत्व यानी उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसके विषय में, जो सम्यक ज्ञान जिसको कहते हैं उसके विषय में नित्यम युक्तता, निरंतर जुड़े रहना उसके साथ, वो अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग। फिर संवेग का अर्थ दूसरा भी है कि संसार के दुखों से भयभीत रहना, तो नित्य भयभीत रहना संवेग नाम की भावना हो गई। त्यागो दानम, त्याग का अर्थ यहां पर दान है। तत्त्रिविधम, उसके 3 भेद हैं, आहार दानम अभय दानम ज्ञान दानम चेति। आहार दान करना, अभय दान करना और ज्ञान दान करना, कैसे करना? तो तत् शक्ति, तो अपनी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार करना। अब आपकी आर्थिक स्थिति अगर साधारण है तो फिर आप कर्ज लेकर के महंगा भोजन मत कराओ साधु, साधु को पेट भरना है तो उनके संयम के अनुकूल अगर भोजन मिल जाए तो पर्याप्त है। तो जिसकी जैसी शक्ति है वैसा करे। और यथा विधि, विधि का उल्लंघन न करके, विधि अनतिक्रम्य यथा विधि, ऐसा समास होता है और ये अव्यय बन जाता है यथा विधि, जैसी विधि। विधि का अर्थ क्या होता है? नवोपचार विधि। विधि का अर्थ नवोपचार विधि ही होता है। विधि पूर्वक आहार देना का मतलब नवोपचार विधि से आहार देना, पड़गहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणमन और 4 शुद्धियां, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एषणा शुद्धि, 4 शुद्धियां। प्रयुज्य मानं त्याग इति उच्यते, इस प्रकार से प्रयोग करने पर वो त्याग इस तरह कहा जाता है। अनिगूहित वीर्यस्य मार्गा विरोधी कायक क्लेशस तप, अपनी शक्ति को न छुपाने वाला जब रत्नत्रय से अविरुद्ध काय क्लेश करते हैं, अपनी शक्ति को न छुपाने वाले, जब रत्नत्र मोक्ष मार्ग से विपरीत न जाते हुए काय क्लेश करते हैं, उसका नाम तप है। फिर कहते हैं यथा भांडागारे दहने समुत्थिते, जैसे अनाज के कोठे में आग लग जाए तो तत् प्रशमनम अनुष्ठीयते, उसको बुझाया जाता है। बहुपकारत्वात्, क्योंकि उसको बुझाने में ही उपकार होता है। तथा नेक व्रतशील समृद्धस्य मुनेस तपस कुतश्चित प्रत्युहे समुपस्थिते, उसी प्रकार व्रतशील से समृद्ध, अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध जो मुनि है, उनकी तपस्या में कोई प्रतिकूलता उपस्थित हो जाए तो संधारण समाधि, उनकी रक्षा करना समाधि है। तो यहां पर समाधि का अर्थ धर्म शुक्ल ध्यान नहीं है, और यहां समाधि का अर्थ समाधि मरण भी नहीं है, बल्कि कोई व्रत और शील से संपन्न साधु कोई अड़चन आ रही है, उनकी तपस्या में कुछ बाधा उपस्थित हो रही है, उस बाधा को दूर करना समाधि है। और साधु को स्थिर रखना समाधि है। गुणवत् दुखोपनिपाते निरवद्दीन विधिना तदपहरणम वैयावृत्यम, और जो गुणीजन है उनके ऊपर दुख आ जाए, उनके ऊपर संकट आ पड़े, स्वास्थ्य बिगड़ जाए या और कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर निर्दोष विधि से उसको दूर करना औषध आदि के माध्यम से, वो वैयावृत्य है। कुछ सेवन के योग्य भी होती है वस्तुएं, कुछ ऊपर से उपचार के रूप में भी होती है। अर्हत आचार्य बहु श्रुतेश प्रवचनेषु च भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग भक्ति। अर्हंत आचार्य, उपाध्याय और आगम के प्रति भाव विशुद्धि से युक्त जो अनुराग है, उसका नाम भक्ति है। अच्छी सुंदर बात लिखी, भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग का नाम भक्ति है, सामान्य अनुराग का नाम भक्ति नहीं है। षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम यथा कालम प्रवर्तनम आवश्यका परिहाणी, छह प्रकार की जो आवश्यक क्रिया है उसमें यथा समय प्रवृत्ति करना आवश्यका परिहानि है। ज्ञान तपो जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना, ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, जिन पूजा की विधि के माध्यम से भी धर्म को प्रकट करना मार्ग प्रभावना है। वत्से धीन वत्स धर्मणि स्नेह प्रवचन वात्सल्यम, बछड़े के प्रति गाय के समान सधर्माजनों के प्रति स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य है। तान्येतानि षोडश कारणानि, वे ये 16 कारण सम्यक भाव्यमानानि भली भांति भाव्यमानी भावित किए जाने पर, व्यस्तानि समस्तानि च, इनमें से कुछ भावनाओं को प्राप्त कर लो अथवा सभी भावनाओं को कर लो। तीर्थकर नाम कर्म आश्रव कारणानि प्रत्येतव्यानि, वो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव हो जाती है ऐसा जान लेना, यानी पूरी 16 न भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है, क्योंकि पूरी 16 भावना मुनियों में ही बनती है। गृहस्थों में नहीं बन सकती, जैसे गृहस्थों में भी अगर श्रावक है, कोई श्रावक होते हैं, कोई सामान्य गृहस्थ होते हैं, प्रतिमाधारी नहीं होते, तो फिर उनमें ये सब बनेंगी नहीं पूरी भावना। षट आवश्यक कैसे करेंगे, और शक्ति त्याग और तप सब लोग कैसे कर सकते हैं? श्रेणिक राजा ने की थी क्या तपस्या, बताइए? नहीं की थी, लेकिन तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो पूरी 16 आवश्यक नहीं है, लेकिन दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि के बिना नहीं होता। इदानीं नाम नामाश्रवाभिधानानंतरं गोत्राश्रवे वक्तव्ये सति नीच गोत्र नीचैर गोत्रस्य आश्रव विधानार्थम इदमाह। अब नाम कर्म का वर्णन करके गोत्र कर्म के आश्रव को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि नीच गोत्र का आश्रव क्या है। परात्मनिंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। निंदा की परिभाषा बता रहा है। वास्तविक दोष को प्रकट करने की इच्छा का नाम निंदा है और गुणों को प्रकट करने के अभिप्राय का नाम प्रशंसा है। यहां पर अभिप्राय को निंदा और प्रशंसा कह रहे हैं। फिर बाद में शब्दात्मक प्रवृत्ति बाद में अलग से होती है, लेकिन वो अभिप्राय प्रशंसा और निंदा की श्रेणी में आता है। यथा संख्यम अभिसंबंध, उसको क्रम से संबंध जोड़ लेना सूत्र में। पर निंदा आत्म प्रशंसा इति, दूसरों की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना। प्रतिबंधक हेतु सन्निधाने सति अनुद्भूत वृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम। प्रतिबंधक हेतु का सन्निधान होने पर अनुद्भूत वृत्तिता, कोई चीज प्रकट नहीं करना, अनाविर्भाव व्यक्त न करना उच्छादन है। उच्छादन शब्द आया हुआ है उसमें। सद गुणोच्छादन उद्भावन, प्रतिबंधका भावेन प्रकाश वृत्तिता उद्भावनम। और कोई अड़चन नहीं आ रही है तो फिर प्रकट कर देने का नाम उद्भावन है। अड़चन आने पर प्रकट न कर पाना उच्छादन है, और अड़चन न आने पर प्रकट करना उद्भावन है। उच्छादन और उद्भावन। अत्रापि च यथा क्रम अभिसंबंध, यहां भी क्रम से जोड़ लेना। सद्गुण उच्छादन असद्गुणोद्भावन इति, विद्यमान गुणों को प्रकट न करना और अविद्यमान गुणों को प्रकट करना। तान्येतानि, ये सारे के सारे नीचेर गोत्र आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, नीच गोत्र के आश्रव कारण ऐसा जान लेना। अधोच्चैर गोत्रस्य आश्रव विधिरत्र उच्यते। अब उच्च गोत्र के आश्रव विधि क्या है वो बताते हैं। तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ च चोत्तरस्य। तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य, उससे विपरीत जो नीच गोत्र की आश्रव विधि थी उससे उल्टी। और नीचे वृत्ति, नम्र वृत्ति रखना, अनुत्सेक यानी कुछ भी अपने पास गुण है तो भी उसकी अकड़ न, अभिमान न करना, वो उच्च गोत्र का आश्रव है। तदित्यनेन, तत ये जो पद आया था उसके द्वारा प्रत्यासत्तेर नीच गोत्र से आश्रव प्रतिनिर्दिश्यते। नीच गोत्र के जो आश्रव बताए उससे उससे प्रतिकूल निर्देश ग्रहण करना। अनेन प्रकारेण वृत्तिर विपर्ययः, उससे विपरीत वृत्ति करना। यानी नीच गोत्र में क्या था, दूसरों की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना। यहां पर अपनी अपनी निंदा करना दूसरों की प्रशंसा करना। फिर वहां पर क्या था नीच गोत्र में, विद्यमान गुणों को प्रकट न करना, अविद्यमान दोषों को प्रकट करना। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, या अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, यहां पर विद्यमान गुणों को प्रकट करना, अविद्यमान को प्रकट नहीं करना किसी अन्य के। गुणोत्कृष्टेषु विनयेनावनतिर नीचैर वृत्तिः, जो गुणों में उत्कृष्ट है उनके प्रति एकदम विनम्र हो जाना, ये भी उच्च गोत्र का आश्रम है। विज्ञान आदि भी उत्कृष्टस्यापि, ज्ञान आदि की अपेक्षा से स्वयं बहुत उत्कृष्ट है सतः, तो भी ऐसा होते हुए भी तत्कृत मद विरहो, उससे आने वाला जो नशा होता है ना अभिमान, उसका न होना, अनहंकारिता अहंकार से रहित होना अनुत्सेक, उसको अनुत्सेक कहते हैं। उत्सेक का अर्थ होता है घमंड, मद। तान्यतान्युत्तर से उच्चैर गोत्र से आश्रव कारणानि भवन्ति, उत्तर से लिखा ना सूत्र में, तो उत्तर यानी पूर्व और उत्तर, पहले जो कहा था वो और उसके बाद उत्तर यानी उसके बाद वाला, तो पहला नीच गोत्र था दूसरा उच्च गोत्र। अब अंतरायस्य का आश्रव, अंतराय का आश्रव क्या है तो बताते, विघ्न करण अंतरायस्य दानादीन नियुक्त्यानि, दान आदि कहे जा चुके हैं दूसरे अध्याय में, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि चेत्यत्र, इस सूत्र में बेहद बता चुके हैं दान वगैरह का। तेषां विहननम विघ्न, उनको खंडित करना, उनमें बाधा डालना विघ्न है। विघ्नस्य करणम, और ऐसे विघ्न को करना विघ्न करणम, अंतरायस्य आश्रव विधि वेदितव्य, अंतराय के आश्रव क्रिया जानना। अत्र यहाँ प्रश्न है, तत्प्रदोष निन्नवादयो ज्ञानावरणादीनां प्रतिनियतता आश्रव हेतु वर्णिता केते प्रतिनियत ज्ञानावरणाद्याश्रव हेतव इति एव उत अविशेषीणेति। शुरू से आपने आठ कर्मों के पूरे आश्रवों का वर्णन कर दिया, तो क्या उन क्रियाओं से वही वही आश्रव होंगे जो जो आपने बताई है, या फिर और भी कोई उसमें विशेष बात है? यदि प्रतिनियत ज्ञानावरणाद्याश्रव हेतव एव आगम विरोध प्रसज्यते, बोले कि अगर आप ये कहोगे कि नहीं इन इन क्रियाओं से इन्हीं इन्हीं कर्मों का आश्रव होता है, तो फिर आगम से विरोध प्राप्त होगा। क्यों? आगमे ही सप्त कर्माणि आयुर्वर्ज्याणि प्रतिक्षणम युगपद आश्रवान्ति इति उक्तम। आगम में कहा है कि आयु को छोड़कर प्रति समय सभी कर्मों का आश्रव एक साथ होता है, तो फिर इन क्रियाओं से एक ही कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कहने से आपके कथन को आगम विरुद्ध कहना होगा। तद विरोध स्यात्, वो विरोध आ जाएगा। और फिर अब देखो शंकाकार की ही शंका है, वो सब पढ़ा लिखा है बिल्कुल, तो इसलिए वो शंका करते समय क्लियर भी करता जा रहा है कि क्या क्या बाधा आ रही है आगम से। अथा विशेषेण आश्रव हेतोर विशेष निर्देशो न युक्त इति। और अगर आप कह रहे हो कि समान रूप से सभी कर्मों का आश्रव इससे होता है इन इन चेष्टाओं से, तो फिर ये भेद बताने की आवश्यकता ही क्या थी आपको, जब सभी का हो रहा है इनसे, तो फिर अलग अलग क्यों बताया आपने? तो अत्र उच्यते, अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसका शानदार उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि तत्प्रदोषादि भिर ज्ञानावरणादि नाम सर्वासाम कर्म प्रकृति नाम प्रदेश बंध नियमो नास्ति। ठीक है, हम मानते हैं कि इन सब प्रवृत्तियों के साथ ज्ञानावरण आदि सब कर्मों का एक साथ आश्रय होता है, तो उनके परमाणुओं के आगमन संबंधी हम नियम नहीं बना रहे इन सूत्रों के द्वारा, लेकिन तथापि अनुभाग नियम हेतुत्वेन तत्प्रदोष निन्नवादयो विभज्यन्ते। लेकिन अनुभाग बंध की अपेक्षा से विचार करते हैं तो फिर वो जो प्रतिनियत प्रवृत्ति बताई ना, उस प्रवृत्ति से उस कर्म का जिसका नाम लिखा है सूत्र में अनुभाग बंध नियम से अधिक होगा, आश्रव सब कर्मों का होगा लेकिन अनुभाग इसका अधिक पड़ेगा। अनुभाग का अर्थ क्या होता है? शक्ति। तो सप्ततिर्मोहनीयस्य कहा ना, नहीं सप्ततिर्मोहनीयस्य नहीं, वहां पर मोहनी संबंधित केवलिश्रुत संग धर्म देवावरण वादो मोहस्य दर्शन मोहस्य, यहां पर दर्शन मोहस्य की बात कही थी, तो वहां पर केवली के आवरणवाद के समय, श्रुत का आवरणवाद करते समय, धर्म का आवरणवाद करते समय, देवों का आवरणवाद करते समय आश्रव तो सभी पापों का होगा क्योंकि प्रवृत्ति पाप रूप है, लेकिन अनुभाग बंध मिथ्यात्व में ज्यादा होगा, ये नियम हो गया। तो हालाहल वाला जो अनुभाग होगा वो उस समय होगा, मिथ्यात्व के आश्रम में, इसी तरह बाकी सब कर्मों का लगा लेना। इति तत्वार्थ वृत्तौ, इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में षष्ठोध्याय, छठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम।